101। सात बनारसी लेन में रहने वाले सन्यासी अभय के विचार और इरादों से प्रभावित हुए, क्योंकि यह परंपरा थी कि एक विशेष रूप से योग्य वैष्णव को उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए। इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी ने अभय को भक्ति सिद्धांत की उपाधि देनी चाहिए, लेकिन श्रीधर महाराज ने इसे अनुपयुक्त समझा कि अभय को वही उपाधि प्रदान की जाए जो उनके आध्यात्मिक गुरु की थी, और उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए, और अभय आभारी थे। उनकी उपाधि में धर्म के प्रति भक्ति का उस गहन विद्वता से मेल था जो भगवान श्री चैतन्य के विद्वान शिष्यों के द्वारा पीढ़ी पर पीढ़ी चलती आ रही थी। उन्हें अपने गुरु भाइयों का वह रवैया पसंद आया और उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। तो ये घटना आप सुन रहे हैं जब प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अभी कलकत्ता में थे। उन्होंने अपने गुरु महाराज से अनुग्रहित हो चुके थे। उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी हो गया था। पहले उनका नाम तो अभय चरण दे था, तो ये भक्ति वेदांत नाम नहीं दिए थे श्रीलोक भक्ति सिद्धांत सबसे। उनका नाम दीक्षा के समय क्या दिए, नाम जो था वही में थोड़ा सा एडिटिंग किए, अभय बाबू था, अभय चरण दे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने अभय चरणारविंद कर दिए, बस अभय चरणारविंद दास, तो ही नाम को थोड़ा सा एडिटिंग करके छोड़ दिए थे। तो अभी इसलिए पहले से स्टूडेंट कैरियर से उनको तो सब अभय अभय बोलते थे, लेकिन अभी एक पुरुखा शिष्य होने के नाते वहाँ के भक्त लोग उनको अभय बाबू बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अभी तक भगवद गीता के ऊपर एक बंगाली लोक भाषा में एक कविता के द्वारा एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था गीतार गान। आप लोग सब पढ़े होंगे, देखे भी होंगे, गीतार गान बंग भाषा में था, लेकिन गीता के मर्मार्थ को बड़े सरल भाषा में लोक भाषा में उसमें व्याख्या किए थे। अभी भी प्रसिद्ध है बंगाली गीता में, आप देखें गीतार गान अवश्य है हर श्लोक के पीछे। तो गीतार गान को प्रभुपाद ने जो रचना किए उसको देख करके, उनके पारदर्शिता, उनके विद्वता, उनके समझ को देख करके जितने उनके वरिष्ठ गुरु भ्राता थे, बड़े बड़े सन्यासी थे, ये तो अभी वानप्रस्थ में भी नहीं थे, गृहस्थ थे अभय बाबू, और विख्या भर लिए थे, उनसे बहुत सीनियर सीनियर सन्यासी स्तर में थे, जैसे ये श्रीधर महाराज थे और उनका भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, इससे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान सन्यासी थे। उन लोग ने उनके ये कृति को बहुत प्रशंसा किए, गीतार गान को देखकर पढ़ के बहुत प्रशंसा किए, और उसके बाद में प्रभुपाद जी के जो गीता के ऊपर जो संभाषण आदि होता था उसको बहुत पसंद करते थे। यद्यपि प्रभुपाद जी इतने विद्वान नहीं थे, भक्ति सारंग गोस्वामी या श्रीधर महाराज की तरह, वो लोग सब तो प्रकांड संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत में श्लोक रचना करते थे, वो लोग टीका टिप्पणी करते थे संस्कृत भाषा में, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने तो नहीं जानते थे, वो तो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, संस्कृत में इतने प्रवेश नहीं था, ना तो इतने बड़े शास्त्र ज्ञानी थे, वो तो साधारण एक मेडिकल प्रोफेशनल के एक पारी थे। तो लेकिन उनके जो भक्ति था, भक्ति में जो समझ था, इसके कारण वो लोग से बड़े प्रभावित थे। उनके बहुत वरिष्ठ गुरु भ्राता बोलते हैं कि जो भी हो भक्ति तो उनके अंदर है, तो और उनको और प्रकृष्ट कर दिया जो वो जो रचना किए गीतार गान, उसको पढ़ करके तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई पढ़ सकता, संस्कृत भाषा तो है नहीं उसमें, बिल्कुल शुद्ध सरल बंग भाषा में लिखे उसको, तो उसको पढ़ करके इतने प्रभावित हुए, एक सभा बुला करके सभी आज वरिष्ठ सन्यासी गुरु भ्राताओं ने अभय बाबू के डिसाइड करते हैं, अभय बाबू को बीच में बैठा रखे थे मीटिंग में, डिसाइड किए नहीं इनके लिए उनको एक उपाधि देना पड़ेगा। तो उनके सीनियर मोस्ट जो थे भक्ति सारंग गोस्वामी, वो बोले हम सोचते हैं अभय बाबू को उनके भक्ति के कारण उनको भक्ति सिद्धांत उपाधि दिया जाए, भक्ति सिद्धांत अभय चरण गोस्वामी। गोस्वामी तो संन्यास नहीं लेते, अभय चरण दास भक्ति सिद्धांत। तो श्रीधर महाराज वही बड़े विद्वान उनके गुरु भ्राता थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किए, बोले नहीं मुझे ये पसंद नहीं। बोले क्यों? बोले भक्ति सिद्धांत अवार्ड जो टाइटल है वो उनके गुरुजी के हैं। बोले गुरुजी के पदवी को शिष्य ग्रहण करना ये अच्छा नहीं लगता, उनके लिए अलग एक भक्ति की विद्वता की एक उपाधि दिया जाए। बोले क्या? न भक्ति वेदांत। तो सबको पसंद आया और प्रभुपाद जी ने स्वयं भी उसको स्वीकार किए, बोले मुझे प्रचार में ये टाइटल बहुत मदद करेगा। इस बात को कहते हैं, उन्हें अपने गुरु भाइयों का यह रवैया पसंद आया और उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। यहाँ एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो मान सम्मान के प्रति कभी आशा नहीं रखते, कभी नहीं चाहते ना, मान सम्मान की आशा क्या करें? उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो यहाँ तक कहे हैं कि जो मान पूजा प्रतिष्ठा उसको किस प्रकार से कंसिडर करना चाहिए, गणना करना चाहिए, शुक्रेर विष्टा, विष्टा समझते ना किसको कहते हैं, सब जानते हैं। अब मनुष्य की विष्टा हो तो चलता, तो फिर मनुष्य है एडवांस्ड, कि गाय आदि और कोई पशु के उन्नत पशु का तो नहीं, पशुओं में जो सबसे निकृष्ट सुअर है उनके निकृष्ट तो उनके साथ वर्णन किया गया है ना नहीं, और हम इस अति निकृष्टतम पशु के उसके निकृष्ट पदार्थ उस त्यक्त विष्ठा को पाने के लिए कितने लालायित रहते हैं। सभी अपने आप को कुछ कर देखिए, जस्ट टू गेट सम नेम एंड फेम, थोड़ा सा पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए हमारा दिन रात 24 घंटा का क्या 75% इसी के लिए नहीं लगता? हाँ, भले उपवास रह जाए चलेगा, घर में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन और अपमान हो जाए बड़े खराब लगता, मान के इतने चाह रहता है, बहुत चाह रहता है। तो इसलिए हम सब लटक खटक के पड़े हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु बोले इस कलयुग का उद्धार का एकमात्र उपाय हरिनाम, और ये हरिनाम तभी संभव हो सकता है, आप सहज भाव से हरि कीर्तन हरिनाम कर सकते हैं जब आपके पास कम से कम 4 गुण हो, जिस हर एक कोई कार्य के लिए क्वालिफिकेशन जरूरत होता है। आजकल तो सिक्योरिटी के लिए भी क्वालिफिकेशन देखते हैं, है ना नहीं, चेक करते हैं, तो हर एक कोई काम के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है, तो क्या भक्ति के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है? अवश्य, भक्ति जो इतने उत्कृष्टतम कार्य है जो भगवान को भी बस में कर सकता है उसके लिए भी बहुत बड़ी योग्यता आवश्यकता है। उसके लिए योग्यता हमारे आचार्य लोग कहते हैं, आपके भजन पता होगा कि नहीं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक भजन लिखे हैं, गुरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। बोले भक्ति का जो रस है, भक्ति जो रस है लिक्विड, भक्ति रस का जो एसेंस है उसको वो जान पाएगा जिनका क्या होना चाहिए, हमारे से संपत्ति तो है ना बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ लिक्विड बैलेंस कैश भी होता है। बोले ये सब कुछ नहीं उनके संपत्ति, घर बाड़ी धन बैंक वाला संपत्ति नहीं, जिनका संपत्ति केवल श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरण जुगल है, जिसका संपत्ति एकमात्र संपत्ति चल अचल दोनों संपत्ति वही है। गौरांग दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रससार। गौरांग महाप्रभु के श्री चरण द्वय जिसका संपत्ति है वही भक्ति के रस का सार को समझ पाता। गौरांग मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेला तार। श्री गौरांग महाप्रभु के मधुर मधुर लीला कथा जिन्होंने श्रवण करते हैं इनका हृदय ही निर्मल हो सकता है। बाकी हृदय निर्मल होने का और कोई उपाय नहीं। कोई आपको सुपरमार्केट में जाए कोई ऐसा हाई डिटर्जेंट पाउडर अभी तक नहीं निकला जो आपके हार्ट को धो सके। कपड़ा धुलाई करने के लिए कई प्रकार के निकला है लेकिन हृदय धोने के लिए हृदय को तो हाथ ही नहीं जाएगा, हम देखे ही नहीं हो कैसा है उसका रंग उसका साइज कुछ पता ही नहीं, धोएंगे कैसे उसको, हृदय को धोवन कैसे करेंगे। तो केवल गौरांग महाप्रभु के अति मनोहारी लीला जो कान दे करके सुने, गौरांग मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भिलाता, ऑटोमेटिक हृदय निर्मल हो जाएगा, मल शून्य हो जाएगा। ये तरीका है बता। गौरांग गुणते झुरे नित्य लीला तारस्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। यहां कहते हैं वही जन भक्ति के अधिकारी है, ही इज द क्वालिफाइड पर्सन, वो भक्ति के अधिकारी है। कौन है? ना गौरांग मधुर लीला ना गौरांग गुणेते छुरे, गौरांग महाप्रभु के दया उनके अति चिन्मय दिव्य गुण के बारे में जो चिंतन करता है, झुरना मतलब किसी से महाप्रभु ऐसे अद्भुत गुण ऐसे अद्भुत उनकी क्रिया, इसको जो मनन चिंतन करता है श्री गौरांग महाप्रभु के लीलाओं को उनके कार्य को उनके विविध व्यवहार को जो चिंतन करता है मनन करता है इसको कहते हैं गौरांग गुणते झुरे नित्य लीला तारस्फुरे। नित्य लीला के लिए कोई आंख बंद करके नाक बंद करके बैठना आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर कान को मन को हृदय को रसाने वाले आनंदित करने वाले गौरांग महाप्रभु की लीला कथा को सुनिए। सुनने के बाद बैठ करके कुछ समय तो कुछ चिंतन कीजिए मनन कीजिए, बस आपके भक्ति की क्वालिफिकेशन आपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं गौरांग गुणते झुरे नित्य लीला तारस्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। कोई जन भक्ति के अधिकारी है जिस गौरांग महाप्रभु के गुण को इस प्रकार मनन चिंतन करता है। तो अभी हम लोग ऐसा किए या नहीं, ऐसे कंठी तिलक करके आ गए भक्ति करने के लिए, आर वी क्वालिफाइड टू डू इट? ये कभी देखे नहीं भाई, अपार्टमेंट तो किसी की कृपा से हो ही गया लेकिन काम करने के लायकात क्या हमारा है नहीं, इसलिए कर नहीं पाते। और श्रीमन महाप्रभु स्वयं कहे जिनके गुण के ऊपर मनन चिंतन करने से भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है वही श्रीमन महाप्रभु साक्षात आपने श्रीमुख कमल से ये उद्गार किए ये घोषणा किए कि भक्ति के इस कलिजुग के लिए जुगजुग के लिए था विशेष करके कलिजुग के लिए दिस इज द ओनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, उसका कोई अल्टरनेटिव दवाई है ही नहीं, एकमात्र दवाई है इस कलिजुग के लिए जो श्री हरिनाम हरिनाम कीर्तन जप आदि। तो उसको करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन जरूरत है। श्री हरि कीर्तन को सहज भाव में करने के लिए भी जो योग्यता आवश्यकता है, श्री हरि स्वयं अपने मुख से कहे कि क्या योग्यता आवश्यकता है, क्या कहे, बोले यू नीड 4 क्वालिफिकेशन फॉर इट। 4 गुणे गुण हई कर ही भजन, ये 4 गुण को प्राप्त करके 4 गुण से गुणी होकर के भजन करो। ये 4 गुण क्या है जानना चाहेंगे, न जान चुके। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 4 गुण है। सबसे पहले है नीचता, सबसे पहले गुण आवश्यकता। भगवत भक्ति करने के लिए क्या गुण होना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नीच दीनहीन समझना। नीच शब्द का अर्थ समझते हैं क्या होता है, जानते ना, नहीं ना, नहीं हम जानते हैं, लेकिन कोई बनना नहीं चाहते, लेकिन पता है नीचता प्रथम योग्यता की आवश्यकता है। दूसरी गुण होना चाहिए सहिष्णुता, क्या है सहिष्णुता, समझ मालूम सहिष्णु किसको कहते हैं, आता है सहिष्णु, मैं थोड़ा मूर्खों में समझ नहीं आता, कोई मुझे समझा सकता है सहिष्णु क्या है। भाई सहिष्णुता कोई पेड़ के फल है, नदी का जल है, क्या है, लिक्विड है कि सॉलिड है, व्हाट इज इट, व्हाट काइंड ऑफ मैटर, नहीं, क्योंकि हम कोई सहिष्णुता है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा, नो एक्सपीरियंस। क्या किसी ने कुछ बोला, हाँ बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। अच्छा अंग्रेजी में बता देना उसका अर्थ हो गया क्या, पानी का मतलब क्या वाटर, यही होता है क्या, यही हमारे मूर्खता है। आजकल जो पढ़े ना वही भाषा को दूसरी भाषा में बोल देते हैं, उसका अर्थ मान देते हैं। माता जी इसी भाषा परिवर्तन करने से अर्थ नहीं निकलता, इसका अर्थ को समझना समझाना पड़ेगा, कि उदाहरण देते हुए कि ये इसी को कहते हैं इसको, है ना, हिंदी में बोला वो अंग्रेजी में बोल दिया उसको किसी मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंस, सहिष्णुता, इसमें भी समझ में आता है क्या, यही तो समझ नहीं हमको भाषा परिवर्तन से क्या। हम कभी कभी सहिष्णुता को ऐसे समझते हैं कि मुझे किसी ने गाली दिया, तकलीफ दिया, थोड़ा कष्ट दिया, अब मैं कुछ रिएक्शन नहीं किया, तो उसको क्या हम समझते हैं, ऐसा निकल गया, आई एम टॉलरेंट, मैं सहिष्णु हूं इसी वजह से। लेकिन अगर कोई देखकर समझ में देखे क्यों रिएक्शन नहीं किया, सह गया, कैसे सहनशील बन गया, पता चला कि जो आपको कष्ट दिया वो आपसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, इतने बड़े धनी है, मानी है, पावरफुल है, कुछ नहीं, तू उनके जमाने में तो कुछ भी नहीं, वो तो आपको उसको नाम नहीं था कि इतने बड़े पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है, धनी है, ये है, आपका दो धड़ाधड़ दो मार के चला गया तो कुछ भी नहीं कर सकता उनको, और देखने से और मारता और ना कोई केस कर सकता, लोग भी आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तब क्या क्या जब कुछ भी कर नहीं पाया, कुछ बोल भी नहीं पाया, हाथ भी उठा नहीं पाया, देख ही नए गुना पर मार खाकर चुपचाप बैठ गया, दूसरे लोग आए बोले अरे यार तू सहिष्णु था ना, मैं सहनशील हूं इसीलिए, इसको सहिष्णुता कहेंगे आप, कहेंगे अरे भाई सहन कर लिया ना, मैंने कुछ नहीं कहा, माता जी की भाषा में पेशेंस, नो रिएक्शन, कुछ भी बोला तक नहीं है और कुछ भी नहीं किया, सब उनको गाली मार सब सहन लिया, तो उसको सहिष्णु नहीं कहेंगे, नहीं प्रभु जी मुख हिला रहे, बोले नहीं कहेंगे, अरे फिर किसको कहेंगे भाई किसको कहेंगे जी, करेक्ट, प्रभाव संपन्न हो करके, शक्ति सामर्थ्य संपन्न हो करके अगर कुछ नहीं कहा तब उसको सहिष्णु कहा, है ना, वो हमजा से नालायक बेगर, सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं था हमारे पास, वो हम सहिष्णु कहेंगे तो ये हमारी मूर्खता ही है। अरे तेरे और तो नो ऑप्शन तेरे पास था ही नहीं कुछ, तो क्या करे, अगर ऑप्शन होता तो छोड़ता, है ना, नहीं ऐसा नहीं है। सारे अपसन होते हुए भी, पूर्ण समर्थवान होते हुए भी उसको सहन कर लेना, इसी को कहते सहिष्णुता। राजा रणजीत सिंह एक बार जा रहे थे भ्रमण में, तभी जान में एक गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, हाथी घोड़ा होता था वाहन, उसी में जाते थे। राजा चलते उनके साथ, मतलब सैकड़ों बड़ी गार्ड, मंत्री संतरी जंतरी सब चलते हैं, जाते थे। रास्ता में एक जगह में विश्राम के एक आम का बगीचा था, वहाँ बैठे थे। तो कुछ लड़के लोग इसी समय तो आम पकता ना, तो आते हैं ढूंढते नहीं मिलता, उस सर में देखते तो पत्थर फेंकते हैं बच्चे लोग उनको आम खाने में। उनको क्या पता है राजा है, बिल्कुल राजा प्रजा को एक्सपीरियंस था नहीं, मिले कोई आ रहे हैं ग्रुप आते रहते हैं अपना पत्थर। लेकिन कोई एक बदमाश से तो पत्थर जोर फेंका, वो पत्थर जा करके आम में तो नहीं लगा, वहां से दूर खिसक करके जा करके राजा रणजीत सिंह का कपल में लगा। राजा रणजीत सिंह जिसके आजू बाजू में सैकड़ों अस्त्रधारी बड़ी गार्ड लगे बैठे हुए थे, राजा जी बैठे थे, और उस मूर्ख बच्चा को पता नहीं, वो तो अपने आम को मार रहा था, पेड़ को मार रहा था, पत्थर आम गिरेगा मैं खा कर जाऊंगा, लेकिन पता नहीं था वो आकर दूर से बैठे थे, वो जाकर के उन पे सर में लगा, थोड़े बहुत कुछ चोट लगा। जैसे चोट लगा पत्थर गिरा तो 500 बड़ी गार्ड प्रम्प्ट बिल्कुल तालीम प्राप्त थे, दौड़ पड़े जाकर पकड़ लिए उनको। वो तो थर 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 कांपने लगा, वो आप क्यों मुझे पकड़ रहे हैं, मैं तो आम तोड़ने जा रहा था। तो आम तोड़ने से बदमाश, अभी तो समझ गए तेरा मृत्युदंड तो हुआ, मरेगा तुम्हें, हमें मार देगा, मुझे मार देंगे, मार देंगे। अरे मेरा क्या कसूर हुआ, मैं तो आम तोड़ने आ रहा था, मैं डेली आता हूँ आम तोड़ के जाता हूँ, क्या हो गया मेरा, तो रोने लगा। लेकिन उसे खींच करके ले आए, उनको पता नहीं था वो डेली डेली, वो राजा को इसी रास्ता में गया, उनको क्या पता, वो तो अपना नित्य नमित्य की भांति अपना कर रहा था, पेड़ को पत्थर मार कर आम गिरा रहा था। लेकिन आज तो ये गड़बड़ हो गया, तो पकड़ के ले आए उसको खींच खांच कर पीट करके, वो तो रो रहा था। आकर राजा के सामने कुछ दंड देने से पहले जब राजा स्वयं विचारपति स्वयं विद्यमान है, उनसे नालिश किया जाए, वो जो ऑर्डर करेंगे वही होगा, उनका सामने लाए। तो उन्होंने आके बोले, यही राजा हजूर उसने मारा, बदमाश है, थप्पड़ उठाते तो मार नहीं रहे थे, वो तो डर रहा था, बच्चा था। तो राजा रणजीत सिंह ने बोले, नहीं उसको छोड़ दीजिए, उसके एक ऐसा कीजिए, ऑर्डर देकर बाजार से बहुत अच्छे बड़े एक फुल बास्केट अच्छे क्वालिटी के आम उनको दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, ये उनके लिए सजा था। क्या दिए उनको, एक आम एक छुड़ी दी। बोली महाराज जी आपके सर में पत्थर मारा। बोले उन्हीं के भाषा के अनुसार मैं विचार करता हूं, उन्होंने पेड़ को पत्थर मारता था, पेड़ क्या करता था, आम देता था, और मैं मुझे पत्थर मारा और मैं उसको प्राण लेगा, मैं पेड़ से हीन हो गया क्या, नहीं, कम से कम तरो रीबा सही सुनना, तरु जैसा तो बनू। सहिष्णुता का उदाहरण देते हुए भगवान तोड़ना दिए हैं पेड़ के साथ, पेड़ के सहिष्णुता सीमा है। भगवान पेड़ को बहुत प्रशंसा किए हैं, वृक्षों को, इसलिए कि पहले सहिष्णु, सहिष्णु अगर कोई हो तो पेड़ जैसा होना चाहिए। क्या पेड़ के सहिष्णुता का विशेषता क्या है, वृक्ष जन काटी ले किछु ना बोलो, पत्थर मारने से तो फल देगा। अरे पत्थर क्या मारे, अगर उसको काट भी दे, सीधा मर्डर कर दे, उसको काट दे, कुछ बोलेगा वो नहीं, यार मैं तुझे फल देता हूं, पत्ता देता हूं, छाया देता हूं, तू मुझे क्यों काट रहा है, बोलेगा नहीं, नो ऑब्जेक्शन। अरे और काम देगा, मरने के बावजूद अब हेल्प करेगा, हम लोग मरने के बाद तो दुर्गंध इसलिए जला ही देते हैं, कोई काम के लायक नहीं, इतने थर्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग के, हम लोग मर जाए आधा घंटे बोले उठाओ उसको जलाओ फेंको यार, दुर्गंध रहने के लिए, बैठने के लायक नहीं उसके पास, हम इतने लायक आते हैं शरीर, लेकिन वृक्ष को काटने पर भी, टुकड़ा टुकड़ा करने पर भी आपकी मदद ही करेगा, और कुछ ऑब्जेक्शन करेगा, बोला तक नहीं है। वृक्ष जेना काटी लह, किछ ना बोला है, कुछ बोलेगा भी नहीं। बोलेगा क्या? मार पीट, पत्थर मारो, काटो, आपको एक पत्ता चाहिए सजाने के लिए, आप एक पत्ता लाते हैं, इतने सारे लेकर आएंगे, जितना 10 पत्ता लगे बाकी फेंक देंगे। अरे भैया जितने चाहिए इतने लेकर जाओ, इतने मेरे से मेरे अंगों को हानि क्यों पहुंचाते हैं, इसे आपको कोई उपयोग भी नहीं है ना। फल एक चाहिए तो पत्थर मारेंगे, तो पत्थर मारने से एक फल थोड़ी आएगा, जो चाहिए कई छोटे मोटे बड़े सारे इमैच्योर फल भी गिरेंगे, लेकिन हु केयर्स, हम कभी सोचते भी नहीं इस वृक्ष को, भाई कष्ट उसको भी तो होता होगा, उसका भी तो अंग है, उनका फल है नहीं। पीट पाट करके तोड़ करके पत्थर मार के लाते हैं, इतने सारे नष्ट भ्रष्ट करते हैं वो लाते हैं, और इस प्रकार से केवल परोपकार ही जीवन के जीवन का, जिसका एकमात्र उद्देश्य है। वृक्ष जब देह धारण करते हैं किसके लिए करते हैं? केवल परोपकार के, उनके जड़ से लेकर के फूल पत्ते तक, आपाद मस्तक, एक एक अंग उपांग केवल परोपकार के लिए है। आपने भी क्या, सब कुछ दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, आपने लिए तो कुछ भी नहीं, केवल दूसरे के हित है। पत्ता, फूल, फल, उसके बाड, उसके जाड़, उनके शरीर, उनके छाल, एवरीथिंग दूसरे जीव के कल्याण के लिए, केवल परोपकार। और जैसे इस प्रकार उनको अत्याचार करो, मारो, पिटो, काटो तक भी कुछ नहीं बोलता, दूसरे की फिर मदद करता है। और घर में वर्षा सहे, सुखी मले पानी ना मांगे। बोले कि अगर अभी बारिश हो रहा है, हम छतरी ले लेते हैं या कहीं घर के अंदर आ जाते हैं, उसके वृक्ष के ऊपर कोई छतरी पकड़ता है क्या? उनको भी तो बारिश उसका ऊपर हो रहा है नहीं। तूफान होता है, बारिश होता है, उल्ला पत्थर गिरता है, कोई कुछ जाकर थोड़े मदद करते हैं, उसे थोड़ा कुछ छाया करते हैं। भयंकर गर्मी, भयंकर वर्षा, भयंकर बतास, घर में वृष्टि सब सहन करता है, तब भी किससे हेल्प नहीं मांगता, तभी नहीं मांगता कि भैया तू, मैं तुझे केवल तुझे ही मदद करता हूं, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, तो मेरे अभी परेशानी पड़ा हूं थोड़ा सा, कैन यू हेल्प मी प्लीज, बोलता है? नो, बोलता भी नहीं, कोई करता भी नहीं। और तो और कभी कभी ऐसे स्थिति होता है, ऐसे अकाल सुखा पड़ता है, सुख सुख करके मर भी जाता है पेड़, मरते दम तक किसी बोलता है थोड़ा आधा ग्लास पानी दे दो यार, मैं तो केवल जल आहार से बचता हूं, मैं तो जलाहार करता हूं, मैं फलाहार भी नहीं करता हूं। वृक्ष फलाहार तो करता क्या? हम लोग तो फलाहार अगर महीना में एक दिन कर ले तब इतने बड़े बाप रे बाप सबसे बड़ी तपस्या माने जाते हैं हमारे, लेकिन वो फलाहार भी नहीं करता, वो तो केवल पादप पैर से केवल जल ही लेता है और कुछ नहीं लेता। जलाहारी केवल जल पी पी करके हमारे कल्याण करने के लिए जिसका प्रोजेक्ट है जीवन का, ऐसे जलाहारी पादप उन्होंने जब सुख सुख कर मरने का स्थिति आता है तभी भी किसी को नहीं बोलता कि थोड़ा मुझे जल दे दो, मैं तो तेरे लिए ही जी रहा हूं, मांगता है ना। सुख सुख कर मर भी जाए तभी किसी को मांगेगा भी नहीं, और कोई मार कर काट कर ले जाए तभी कुछ बोलेगा नहीं। तो ईसा कोई प्राणी आपका समझ में आता है, कोई और दूसरा हो सकता है उनका जैसा? नहीं। इसलिए श्री भगवान ने सहिष्णुता के नाते केवल तरोरी व सहिष्णुना, आहा पेड़ का सहिष्णुता तो सहिष्णुता का सीमा ही है, सीमा ही है। कभी कभी तो भगवान के इस वचन के इस प्रकार अर्थ किया जाए, तरो रिव नहीं, कभी कभी बोलते तरो रपि, कैसे त्रिनात अपि सुनीचे न तरो रपि सहिष्णुता। अपि शब्द लगाने से क्या अर्थ होता जानते हमने? अपि मतलब उससे भी, तृण से भी अधिक नीचता। तृण मतलब संस्थान जो घास है, घास कभी ऊपर रहता क्या? सबसे नीचे जमीन पकड़ करके टिकता हो तो जमीन के ऊपर उगा है घास, जमीन पकड़ करके है। अगर जिसका हम लोग तो जाते ही घास के ऊपर पैर बूट पहन करके, लेकिन जिसका पैर है ही नहीं, निष्पद प्राणी सांप अगर अभी वो भी घास के ऊपर ही चलते हैं, है ना नहीं? जिनका पैर है नहीं वो भी उनको दबाते हुए जाते हैं उसके ऊपर। सभी को नीचे रह करके सहन करता है घास, जमीन को पकड़ करके बैठा हुआ है, कभी ऊपर उठता ही नहीं। सभी के दलित भार सहन करता है, दलन सहन करता है। तो हम तो जमीन पर कर है ही नहीं, हम तो फोर्थ फ्लोर ट्वेल्थ फ्लोर आजकल तो सब होता है, कितने ऊपर पर रहते हैं। तो हम जो जमीन में छोड़कर कभी ऊपर नहीं उठने वाले तीर्ण है, उससे भी तरोर अभी सहिष्णु कैसे बनेंगे ना? तर इसने नीचे कैसे बनेंगे? ऐसे नीचाता में ही नहीं, हम तो कम से कम 6-7 फुट तो ऐसे ही, 5 फुट तो हाइट ऐसे ही होता है। उसके ऊपर घर में ऊपर बिल्डिंग के ऊपर और रहते हैं छत के ऊपर, अब नीचे कैसे होंगे भाई? अब भगवान सबसे पहले कंडीशन करते नीचे होना पड़ेगा, कैसे ना? घास की जैसा, तिनका के जैसा, तृण जैसा नीचे हो, और वो भी तृण जैसा नहीं, तरोर इव नहीं, क्या तरोर अपी, उससे भी ज्यादा नीचे होना पड़ेगा। इसे समान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा कैसे होंगे भाई? मैं उनके बराबरी तो कर ले, उनसे ज्यादा करते हैं, कैसे संभव हो सकता? ज्यादा करो, समान ही नहीं हो सकता। नीचे तो पकड़ के हम रहेंगे नहीं, कोई बाई चांस कभी कभी हम नीचे सो गए, बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, गेस्ट हाउस नहीं मिला, अच्छा था, हवा था, पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं कभी कभी। कभी जीवन में एक आध बार हुआ होगा आप लोग का, नहीं? आनंद लेने के लिए, अब क्या करें, बिछना नहीं, पेड़ के नीचे सो गए, घास था उसी के ऊपर भी, खाली मिट्टी में नहीं सोए, सो गए जैसे भी। क्या कभी ऐसे हो जाता है, सेंसिल से हो गए, कोई उपाय नहीं, गिर पड़े जमीन पर, ऐसे हो जाए, असहाय अवस्था में भी सो जाते हैं। तो सो जाते हैं तो हमारे नीचे घास रहता है ना, घास हमारा ऊपर आ जाता है। हम कभी सोते हैं तो उनको दबा करके सोते हैं, उनके ऊपर सोते हैं, असहाय अवस्था में गिर भी जाते हैं तभी उसके ऊपर गिरते हैं। तो उसके नीचे हम कैसे हो सकते हैं, उसके बराबरी फिर कैसे कर सकते हैं? उसका बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, हमेशा जमीन पकड़ के रहे नहीं, थोड़ी सी हम फिर उठ के खड़े हो जाए, उससे ज्यादा कैसे बने? तरोर अपि सहिष्णुः। लेकिन भगवान की इच्छा ही है कि हम लोग को उससे ज्यादा बनना चाहिए। उससे ज्यादा का अर्थ यह है, क्योंकि तृण का जो घास के तिनका है उनका बेचारे का तो और ऑप्शन ही नहीं है, उनका स्वरूप ये है जमीन के पकड़ कर रहना, उनका कोई और ऑप्शन नहीं है कि बढ़कर छठा सिक्स फ्लोर में जाकर रहे, उनका ऐसा है ही नहीं, वो तो केवल जमीन के साथ ही जी कर रहेगा। तो इस प्रकार जो जमीन के साथ रहकर जिन्हें को उपाय नहीं है, वो तो जमीन में रहना उनकी बड़ी बात नहीं है, उनका तो स्थिति वही है। लेकिन जिसका स्थिति ऐसा नहीं है, जमीन पकड़ कर भी रहता ही नहीं, वो तो 12th फ्लोर में रहने वाला, वो जब आकर जमीन पकड़ कर रहे तो उसको कहा जाएगा उससे भी ज्यादा। इसीलिए हम लोग अगर सहिष्णु बने, इस प्रकार जैसे सबको सहन करना लगे, सहन नहीं, नीच बने और छोटे बने, सबके नीचे हम रहे, सबके नीचे हम रहे रहना चाहेंगे, तब उसको नीचता कहा जाएगा। इस नीचता को समझाने के लिए कभी कभी कहानी हम बताते हैं, कैसे हम लोग अपने भक्ति जीवन में नीचता को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि नीचता कहने से हमको लगता है छोटे हो जाएंगे, छोटे कैसे होंगे भाई, हम कद है 5.5 फीट का, छोटे कैसे हो जाएंगे? अगर बैठे भी ऐसे तभी भी इतने बड़े 65 किलो का होंगे, वो तो है ना, ओजट तो वेट तो रहेगा ना, किसके ऊपर घास रख दो वो तो संभाल लेगा, इतने सारे घास रख लो, लेकिन आप किसके ऊपर बैठ जाओ अरे 65 किलो तो आप ही हो तो कैसे हाल खराब करेगा, तो कैसे इतने नीच कैसे बनेंगे? तो नीचता का प्रैक्टिकल कैसे बताते हैं कि एक समय में एक गांव में एक युवक थे हमारे जैसे, वो भी पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, आजकल तो ग्रेजुएशन तो ऐसे ही, आपके गाजियाबाद में कितने ग्रेजुएशन कॉलेज होंगे अनुमान? इंजीनियरिंग की छोड़ो भाई, ये नहीं ग्रेजुएशन में बोलता हूँ, 150 केवल 150 स्नातक विद्यालय है, ग्रेजुएशन कॉलेज है। और हर साल कितने प्रोडक्ट होते होंगे उसमें सब मिलाकर? 500 एवरेज, और 150 × 500 7500 प्रोडक्ट ईच ईयर ग्रेजुएट निकलते हैं, इतनी नौकरी कहाँ से आएगा भाई? हर साल में 7500 ओनली इन गाजियाबाद, और वो 7500 कभी गौशाला में जाकर गोबर उठाएंगे, हल चलाएंगे? नेवर। बोलेंगे हम तो केवल ऑफिस में बैठ करके एसी में लैपटॉप, अभी डेस्कटॉप भी छोड़ गया, लैप में, लैप में टप करके रहेंगे, टप टप करते रहेंगे बस, कलम ही नहीं चलाते हैं आजकल, पहले लिखा पढ़ाई करते किरानी, वो भी नहीं, पेन को पेन समझे, पेन इज पेन, अब तक केवल टप टप करेंगे बस, वो भी टेबल में रहता है, टेबल में भी लैप, अभी लैप नहीं पाम, हाथ के ऊपर टप टप करेंगे। ये स्थिति आ चुका है, सारे सारे हर साल 7500 नौजवान निकलेंगे जो यही काम करना चाहेंगे और कुछ नहीं करते, बदमाशी करेंगे इसी में करेंगे, बोला हम मेंटेन करो गवर्नमेंट को। अरे ये खतरनाक जो शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमारा है, इतने टेररिस्ट पैदा करते हैं हम लोग, हम करें क्या? तो इस प्रकार से इस जमाने का एक व्यक्ति था, अपने गांव से जमीन बाड़ी खेत को जब भी बेच बाच करके, धान चावल बेच करके आ करके गाजियाबाद सिटी में ग्रेजुएशन किया, चाहे इंजीनियर में किया हो जो पता नहीं, जो भी किया था, करने के बाद आप किस लिए सब ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ते हैं? एकमात्र लक्ष्य क्या है? नौकर बनना, करेक्ट, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, जब के लिए ही पढ़ते हैं। अगर आपको बोले कि नौकरी नहीं मिलेगा तो आज ही दिन पैसे पढ़ाई छोड़ देंगे, नौकरी नहीं मिलेगा हम क्यों पढ़े फिर? नहीं, पूर्ण आशा ले विश्वास लेकर के पढ़ते हैं केवल नौकर बनने के लिए। जो भी हो, अब बेचारा पढ़ा था उन्होंने, इतने उनका स्थिति अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी गांव से आ करके हॉस्टल में बेश में जब जा रहा करके पढ़ा, पढ़ने के बाद जब कंपटीशन अप्लाई वगैरह किया, साल दो साल तक लगा, कोई लगा ही नहीं, जब लगा ही नहीं, लेकिन घर वाले तो देखें बेटा तो एक ही है तो क्या करें, हो जाएगा, लग जाएगा, जब गाजियाबाद में पढ़कर आया तो क्यों नहीं हो जाएगा, उनको वो गुरुकुल में पढ़कर आया तो हो ही जाएगा, ऐसे करके तो उनको क्या कर दिए, उम्र हो जाए क्या करते हैं भाई, घर में रहने के लिए व्यवस्था तो एक ही है ना, सबसे बड़ा भीट उपहार चतुर्भुज करवा दिए, दो हाथ तो था ही, उसको और दो हाथ लगा दिए, मतलब हाँ शादी करवा दी। जब करवा दिए, पहले तो आपने आप को मेंटेन करने के लिए था नहीं, अब आ गए दूसरे, अब आने के बाद तो और समस्या बढ़ गया, अब तो काम करना ही पड़ेगा, अब कितने रात दिन लग करके तैयारी करने लगा, क्या क्या बुक लाते हैं आजकल सब कॉम्पिटिटिव जर्नल, क्या क्या सुना ना, बेकार थर्ड क्लास चीज पढ़ते पढ़ते रात दिन तक मिलता कहाँ है, क्योंकि आजकल केवल कंपटीशन में सक्सेस होने से नौकरी नहीं मिलता, तीन चीज आवश्यकता है जॉब मिलने के लिए, जानते ना नहीं, क्या क्या चाहिए? आप लोग इस समय का जवाब नहीं है लगता है। हाँ भाई, इतने एक तो एक्सपीरियंस है भाई, ये हाल के अभिज्ञता है, केवल आप अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर तैयारी करके अगर कंपटीशन को क्लियर कर भी लिए, मैंने क्लियर कर दिए, तभी ना लगे कि उसके बाद फिर वाइवा टेस्ट होता है, और उसमें भी क्लियर किए तभी ना लगे, ये तो इंटरव्यू का क्लियर हुआ तो फिर उसके बाद में सीट तो लिमिटेड होता ना, उसके बाद ये भी चलता है, एक आवश्यकता क्या है, ज्ञान के साथ धन भी, वो भी आवश्यकता, और वो भी बहुत लोगों के पास है, ज्ञान तो कई लोगों के पास है ही है, उसके साथ साथ ये भी कई लोगों के पास है, तो वो दोनों नहीं चलेगा, थ्री फेज में गाड़ी चलता है, तीसरा फेज क्या है, पहचान, ज्ञान धन और पहचान, तभी जाकर काम बने, थ्री फेज में मटर चलता है, सिंगल फेज में नहीं चलता है। तो तीनों जिसके पास हो, पहचान के प्रेशर भी डाले, धन भी डाले और ज्ञान तो है ही है, तब जा करके नौकर बने। तो बेचारा के पास है तो था ही नहीं, बहुत प्रयास किया था लेकिन हुआ ही नहीं। अब चतुर्भुज होने का एक दो साल बीत गया, अब ऐसे स्थिति आया कि तो उनको झाड़ू से ट्रीटमेंट होने लगा, है ना, नहीं रोटी से नहीं कैसे। आप देखा कि और सम्मान में किससे आशा करूं, जिससे सम्मान मुझे देने के लिए आए थे वही तो इसी प्रकार मुझे सम्मानित कर रहे हैं, अब दूसरे क्या कहूं। माँ पिता भी डांटते हैं, वो भी डांटती है, वो भी बोलते हैं, वो भी क्या करे, और उसमें इशू भी एकाद हो गए, इशू मतलब समझ गए ना। और ऊपर से, बीच से और नीचे से, तीनों तरफ से प्रेशर आने लगा, बेचारा को जीना ही हराम हो गया। तो उन्होंने बोला अरे क्या करूं, कुछ ना कुछ तो काम करे, कर नहीं, नालायक कहीं के आलसी कर नहीं रहे, जाओ कुछ तो ढूंढो, कुछ तो करो, नहीं तो मजदूरी करो। अब राजी हुआ मजदूरी करने के लिए, नहीं और क्या करे, फटा पुराना पैंट शर्ट, क्योंकि धोती कुर्ता पहनने से तो इज्जत चला जाता है, उसको पहनेंगे नहीं। ये तो आप लोग केवल मंदिर आने के लिए पहनकर आगे, बड़े मुश्किल से अब जाते ही उतर देंगे हम लोग। तो हाँ देखा जाए तो 24 घंटा में कितने समय इसमें रहते हैं, बहुत कम समय, 2 घंटा तो मंदिर जाते हैं बाकी। तो बेचारा धोती पुती था नहीं, तो इसलिए फटा पुराना पैंट भी खरीदने के लिए धन ही नहीं था उनके पास। जो 6 साल पहले उनको मिला था शादी के समय में जोड़ी पैंट, उसी को पुराना फट गया था, रफू करके कई जगह में फट फट गया, उसी को पहन करके निकला, सारे डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ले करके और लेकर के निकला। बोला कहीं ना कहीं तो कुछ करूँ, और घर में इसी प्रकार अत्याचार कहाँ सहन सको, बेचारा निकला। निकलते निकलते पूरे गाजियाबाद सिटी में जितने प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी थे, पैसे पूछेंगे नहीं, प्राइवेट वालों के पास हाथ जोड़ा कोई भी नहीं, बोले नहीं है हम सैलरी गया। वो छोड़ करके दूसरी जगह गया, और 50 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर आगे, 200 किलोमीटर आगे, दूसरा स्टेट में गया, और दूसरा स्टेट में गया, बहुत दूर चला गया, गाड़ी में नहीं पैदल में चलते चलते पूछते पूछते हरे कुला को पूछता, भाई कुछ भी काम दे दो, अभी जरूरत नहीं, कोई पूछ करके थोड़ा और क्रिटिसाइज करके छोड़ देते, कोई थोड़ा तलक देख करके फिर रह नहीं जाओ, ऐसे करते करते इस प्रकार से जा करके अंतिम बहुत दूर में एक कोई कस्बा में पहुंचा। वहां एक बड़े सेठ थे, उनका कारोबार कुछ खास था, ऐसा काम था, बड़ा सेठ थे और इस कस्बा के सबसे बड़े माने जाने धनी व्यक्ति थे। तो उनका पास में बहुत लोग काम करते थे, उनके दीवान थे, उनके मुनीब थे, और उनके बहुत सारे कर्मचारी थे, और उनका कोठी के सामने तो 4-4 सिक्योरिटी भी थे, गनमैन थे, उनका ऑफिस भी था, सिक्योरिटी ऑफिस भी था। तो बेचारा सुने बोले अरे उनका पास जाओ, शेठ जी बड़े धार्मिक है, वो मदद करते हैं, इस कस्बा में तो उनका नाम चलता है, उनके पास जाओ। तो बड़े आशा और विश्वास लेकर के बेचारा, अब तब तक तो 2 दिन का एकादशी हो चुका था उसका, मतलब एकादशी व्रत के हिसाब से नहीं, और निरुपाय होकर एक बार से कहता क्या करें, कुछ भी नहीं था पैसा खाने के लिए, होटल फोटल को जाना छोड़ो, आजकल तो कोई फल भी पत्ता भी खरीदने जाओ तो बिना पैसा में नहीं मिलता। तो बेचारा केवल रास्ता साइड का जो टैप पानी के ऊपर से 2 दिन बचा था अभी तक जलाहार करके। इस प्रकार के दुरावस्था की स्थिति में एक सेठ जी का कोठी के सामने जाकर पहुंचा, पहुंच करके और कुछ नहीं मिला, दर दर भटकते हुए पेट में पीड़ा भोग की, पूरे शरीर मन में इतनी जलन, इतनी भारी चिंता, ये सब लेकर हाथ जोड़ करके बड़े आकुति मिनित करके सिक्योरिटी को पूछा, जो उनका सिक्योरिटी था, चौकीदार था, चौकीदार का सबसे छोटा, उनके ऊपर भी सिक्योरिटी इंचार्ज था, उनके नीचे वो शिफ्ट में जो चौकीदार बैठा था, लाठी वाला, गनमैन भी नहीं है, गनमैन तो फिर भी थोड़ा सीनियर होते हैं, लाठी वाला चौकीदार को जाकर के उनको हाथ जोड़ के नेहरा होलो कर बोलने लगा कि चाचा जी, भैया जी, दादाजी, कुछ तो काम दे दो यार। वो उनकी इस दुर्दशा, इस वचन को देख करके उनका मन में दया आ गया, देखने में लगता है कि बड़े दिनहीन हो चुका है, खाना पीना भी नहीं है, कुछ तो मदद करना चाहिए। वो घर से ड्यूटी में आया था, टिफिन में दो तीन रोटी लेकर आया था घर में, तो उसमें एक आध फाड़ कर दे दिया, बोला रख लो, बोला धन्य होता रहो, बैठ गया, एक आध रोटी खाकर पानी पीकर बैठ गया, बोला चलो भगवान ने इतने कृपा तो किए, दो दिन तो एकादशी कर चुका था, अभी तो कम से कम ब्रेकफास्ट हुआ है ना, नहीं और टाइम क्या देखे ब्रेकफास्ट का, बिना टाइम में जो मिला सब करके बैठ करके उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, तो उनका दुख सुन करके उनका थोड़ा लगा कि मदद करना चाहिए, तो उनके जो ज्ञानवान जो उनका अफसर था सिक्योरिटी अफसर, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, लड़का बहुत लगता है कि अच्छा लड़का है, बड़े उनका लगन है, स्वभाव अच्छा लगता है, गुण अच्छा है, ईमानदार लगता है, तो कोई काम, बोले कोई काम सेठ जी के पास पहुंचे तो इतने सारे बीच में होते हैं कैसे काम, कोई बात नहीं, हमको अभी जो नाइट ड्यूटी कर रहा था उनका सा शादी होने वाला, वो गया छुट्टी में पता नहीं दो महीना तक, अभी हमको जरूरत था तो चला गया, अरे नाइट क्या दोपहर को तभी, रात को दोपहर को तभी करूँ, मुझे तो कुछ भी चाहिए, राजी हो गया, नाइट ड्यूटी का सिक्योरिटी बनने के लिए, लाठी मैन बनने के लिए तैयार हो गया, योग्यता था, उसका सर्टिफिकेट लेकर रहता था ग्रेजुएशन का, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं था इसी प्रेशर के कारण बना, बन करके इतने ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल सचोट रूप से उस सिक्योरिटी काम में किया, जो सिक्योरिटी रखा जब सर वो खुश हो गए, बोले यार अभी तक तो हम कितने लोगों को अपॉइंट किए लेकिन ये तो बिल्कुल झुकता भी नहीं है, बिल्कुल रात मतलब रात जगता है, पक्का ड्यूटी करता है, तो प्रसन्न हो गए, थोड़ा उनके बड़ाई और कहने लगे ऊपर के बाद, तो धीरे धीरे एक आध महीना के बाद उनका डे शिफ्ट हो गया, डे शिफ्ट में ऐसा काम किया, सबके व्यवहार किया, लोगों को आने जाने में जो उनके सब, तो उनको उनके खुश होकर के सिक्योरिटी इंचार्ज को इंचार्ज पद प्रमोशन हो गया, दूसरे महीना में और प्रमोशन, हर महीना में प्रमोशन होने लगा उसका, किस कारण से, कोई इंटरव्यू देना जरूरत नहीं पड़ा था, उनकी ईमानदारी और सच्चोटता के कारण, उसके व्यवहार के कारण सभी प्रसन्न होकर के उनके कर्तृपक्ष उनको ऊपर ले जाते, ना ना तू इसे आ जा, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ आ जा, धीरे धीरे एक साल के बाद वो तो सेठ जी का जो मुनि लोग होते हैं उस बोर्ड तक चला गया था, ट्रेजरर बन चुका था मुनि, और मुनि में एक साल के बाद हेड मुनि तक पहुंचा हुआ था, जो हेड मुनि पहला था पक्के बाल, वो बोला रही तो तब उनको सब समझ आया, तभी तक तो सब प्रशंसा कर रहे थे, एक साल तक तो प्रशंसा कर रहे थे, एक साल में जब वो वहां स्टेज तक पहुंच गया तब सबका भाव बदल गया, सब जलने लगे, बोले अरे हमारा देखते देखते यार आया था, रोटी नहीं खा मिल रहा था उसको, अरे अभी यहां तक पहुंच गया, हम योग्य वही है, हमें वही के वही डाइटी कर रहे, वो तो मुनि बन गया अब तो, और सेठ जी का बड़े नजदीक भी होने लगा, क्योंकि इस प्रकार रिक्वायरमेंट सेठ जी समझ गए, उनके व्यवहार उनके काम से वो भी प्रसन्न थे, उनको अच्छा खासा उनको क्वार्टर भी दे रहने के लिए, अच्छा क्वार्टर था अपना, फ्लैट रहने के लिए मिला, और सारी व्यवस्था सैलरी माने बिल्कुल हेड मुनि, क्या बोलते मुनि को क्या बोलेंगे, हेड मैनेजर पोस्ट में चला गया, मैनेजर पोस्ट में चला गया, और इतने तो इसमें थे सभी का जलन हुआ, जो पहले मैनेजर था रिटायरमेंट के, अब जो मैनेजर प्रमोशन होने वाले थे इनका, तो सबका तो जलन हुआ, लेकिन क्या करें, और सभी ने उनका प्रशंसा तो कर ही रहे थे, अब आज बदल गए, सब बोले ही रहे, तो उठते चले जा रहे हैं, हम तो जैसे तैसे रह गए, हम तो कोई पूछ नहीं रहे, मालिक तो उनका ही हो गया फेवर में, तो सभी ने धीरे धीरे उनके ईर्ष्या करके उनको जलन हो करके सब उसका पीछे पड़ गए, पीछे पड़ कर कुछ कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि पीछे पड़ने के लिए कुछ उसे करने के लिए कुछ तो दुर्गुण देखना पड़ेगा ना, ढूंढने लगे, पानी फेंक करके दुर्गुण ढूंढ रहे थे, कुछ तो मिल जाए, जैसे पढ़ नहीं सकता तो थोड़े पानी ला कर धो देने से दिखा जाएगा, तो इससे धो धा करके ढूंढ रहे थे, कुछ तो दुर्गुण निकले, कुछ खराब पणता निकले, नहीं निकल रहा था, वो इतने होशियार था, इतने सच्चोट ईमानदार था, किसी प्रकार से कुछ का डिमिनिट्स नहीं निकाल रहे थे, तो सारे जितने कर्मचारी थे सकड़ो 100 से ज्यादा सारे यूनिट हो गए, यूनिट होकर के एक ही काम लिए, क्या काम, किसी भी प्रकार से उनको खींचाना है, लॉकडाउन करना है, लेकिन कोई पॉइंट ही नहीं मिलता, मालिक को बोले तो किस बोले सारे मिलकर के ढूंढे उसका दुर्गुण किसी प्रकार से उसको डाउन करे। सारे मिल गए, वो अकेला पड़ गया, कोई उनको कुछ नहीं। जो उनको इतनी प्रशंसा कर रहे थे आज पूरे वो देख रहा था कि क्या बदल गया, जब यही है संसार बदल गया। तो इतने बुरी तरह से उनको ड्यूटी लगने लगे, उनका जो फ्लैट में रहता था कोई उनके से जाकर वो भी खड़ा रहता था, कुछ तो दुर्गुण देखूं ताकि कंप्लेन करूं उसके नाम में, वो कुछ मिल नहीं रहा था। कुछ दिनों के बाद में एक ने देखा, मार किया कुछ उनका गड़बड़ी क्या कि उन्होंने प्रतिदिन दोपहर में लंच उनको ही मिलता था, मुनीम जी के पास तो वहीं से बन गया था, तो खाने के बाद अपना घर में आता था दोपहर ड्यूटी में बाद, वो आ करके कबाट बंद करके आधा घंटा अंदर रहता था। वो बोलते इसी समय क्यों चला जाता, भागता हमको जाते नहीं, उस समय क्वार्टर में जाता है वो, जाकर दरवाजा बंद कर देता है अंदर से, बंद करके बैठता है, कुछ तो है गड़बड़ी, पता कि जरूर एवरीडे जाता है और जाकर के ऐसा ही करता है, तो क्या करता है किसी को पता नहीं चला, लेकिन करता क्यों है। इस समय ट्रेजरी बंद करके जाता है, चुपचाप जाकर क्वार्ट बंद कर बोलते कि अरे कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। अब उनका मन में यही शौक हुआ, एक दूसरे को कानफूसी बोलने लगा, बोला पता है उसे, पता है, रियली रियली, चलो मैं भी देखता हूँ, अरे सच में करता है, क्या करता है? पता नहीं लेकिन जाता तो है, कुछ तो करता होगा, कुछ तो करता होगा, अभी क्या संभालने के बाद जाता है, कुछ तो अरे इतने में और कुछ मिला ही नहीं, इतना ही मिल पाया उनको कि इस समय से इसी पर्टिकुलर समय जाके घर के अंदर अंदर से कबाड़ बंद कर उसका। तो इसी बात को बड़ा करके तिल को ताल बना कर, ताल समझते हैं, ताल नहीं जानते क्या था? तिल समझते हैं, सिसमी सीट, और इसको ताल के साइज नारियल जैसा होता है, और नारियल जैसा फल बना कर, सिसमी सीट जो तिल के बीच कितना बड़ा नारियल जैसा है, ऐसे बताने लगे सब, इतने बाहुल्य करके बता करके। अब यहां तक कंप्लेन बिल्कुल डेली को डेली एवरी घंटा कंप्लेन पहुंचा मालिक के पास, सर आपने तो लुट जाएंगे, सर अमिट जाएंगे, हमारा दोष नहीं देना, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो बताना चाहे हम बता देते हैं, आप देखो तो गए, वो जिस प्रकार जब काम कर ही रहे हो तो गए, आपने तो अब थोड़ी दिन का बात है, आप देखना तलितलांत हो जाएंगे साहब, आप देख लीजिए। अब बार बार बोले तो कोई उनको तो लगा, अरे सारे मेरे कर्मचारी सारे मेरे पीछे बोलते हैं कि क्या मैं तो दिखाऊ, बहुत अच्छा लड़का था, क्या हो गया उनका, बोले क्या बताओ तो सही ना साहब, क्या बताएं आप, तो हम तो केवल देख ही लिए बस, आप देख सकते हैं ना क्या ना, प्रतिदिन गड़बड़ चलता है, क्या गड़बड़ी है ना, ठीक दोपहर समय में चला जाता है और पता नहीं क्या करता है, पता तो है ही नहीं उसको सचमुच पता नहीं साहब क्या करता है, घर में कबाट बंद करके करता है, अंदर से सिकुड़ी देख करके अंदर से करता है। अरे करता क्या है ना साहब, आप ही देख सकते हैं, हम तो क्या कहें, लेकिन जाता है जरूर, तो बहुत भारी काम चल रहा है, अब क्या काम करता तो उनको है नहीं। अब इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन किए, ये प्रेजेंटेशन की कला होता है, ऐसे प्रेजेंट किए कि मालिक भी डाउट करने लगा, बोला यार अब सब बोलते हैं अगर मैं समय पर कुछ पदक्षेप ना लूं तो आगे चल कर कोई भारी ना हो जाए काम घटना। तो उन्होंने एक दिन बोला चले आ जाए, मैं कहूँ प्रश्न साहब आप बस तो समझ जाएंगे, समझ जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे। स्वयं पर्सनली मालिक ने चला आज मैं जाऊंगा, टाइम क्या है ना ठीक इसी समय सर चलिए हम आपके साथ हैं, पीछे पीछे चलते हैं। 500 वर्कर उनके पीछे पीछे चले कि सबका मन में डाउट था व्हाट इज डूइंग, किसी को तो पता था नहीं, सारे मन में बड़ा उत्साह उमंग था देखने के लिए जानने के लिए कर क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ी करता होगा, अब पकड़ा जाएगा तब तो वहीं क्यों वहीं, अब मालिक क्या कहे, हम दो तरह छपड़ मार देंगे उसको मालिक के सामने मारेंगे, गालियां देंगे उनको, गालियां तो पहले बहुत दे रहे थे। अब सुजोग ढूंढ करके गए, जैसे वो चला गया जा करके अंदर से दीवार बंद कबाड़ बंद कर दिया, बंद कर दिया, बोले साहब चलिए देखिए अब क्या कर रहे, इसी समय देखना चाहिए साहब, नहीं तो आधा घंटा तो फिर आ जाता है चुपचाप, साधु बनकर आता है, अब भी देखिए क्या करता है, छिप करके जो होता है वही करता है, छिपे रुस्तम है। अब मालिक के तो मन में इतने भर दिए थे, मालिक जाकर ठीक इस समय से कबाड़ बंद किया, थोड़े दिन जा करके उसका नाम पुकारा, वो अंदर से बोला कौन है, तो मालिक ने बोला मैं मालिक ना साहब आप है, आप कैसे मेरे कुटिया पर मेरे क्वार्टर में आपके, नहीं दरवाजा खोलो ना साहब, बस थोड़ी देर में खोलता हूँ, आपका आने का क्यों कष्ट की, नहीं पीटने लगे दरवाजा, अब भी खोलो इसी मुहूर्त में, ना साहब देखिए एक इमरजेंसी, अभी खोलना चाहिए नहीं तो कुछ गड़बड़ कर देगा। अच्छी बात, उन्होंने तो उनके बात में आकर पिटने लगा दरवाजा, अभी खोलना चाहिए इमीडिएट, मैं दरवाजा तोड़ूंगा, ना साहब मत तोड़िए अभी खोल देता हूँ, जब झूठ खिला के खोल दिया दरवाजा, अरे घुस गए सारे घुस गए भीड़ करके अंदर, आप घुस करके सारे, एक ही तो सिंगल बेडरूम था वो, स्टूडियो अपार्टमेंट था वो, है ना, नहीं लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट में तो 1 BHK भी होता ना, एक बाथरूम एक बेड किचन रूम एक बेडरूम यही होता ना, बस इतनी तो होना चाहिए, इनके बजाय आदमी रहेगा कैसे, एक बाथरूम एक किचन एक बेडरूम तो होना ही चाहिए, तो किचन के अंदर 5-7 बाथरूम के अंदर 5-7 और बाकी सब घुस गए, ढूंढने के लिए कुछ तो कुछ नुक्स निकालेंगे, आज का चांस गया तो नहीं तो बेकार हो जाएगा सारे कंप्लेन इतना दिन का कंप्लेन, सारे घुस गए चारों तरफ, साबुनदानी तक चेक करने लगे कुछ तो निकालेंगे कुछ पॉइंट, आप ढूंढ ढांड करके चेक चा कर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कर क्या रहा था डेली, एक सूटकेस उसको लेकर आया था, जब आया था घर से वो ब्रीफकेस नहीं था, लोहे का था, पहले जमाने लोहे का ट्रंक होता था ना, वो ट्रंक इसमें लिया था बेचारा, वो ट्रंक अभी जंक खा गया है, जंक खा कर 2-4 जगह में थोड़ा फट भी गया है, जंक खाने से हो जाता ना छेद हो चुका है, वही ट्रंक और उसी में एक पुराना ताला, उसको ताला का नाम कंपनी में भूल जाता हूँ, वो कंपनी का ताला लगाया था, उसको खुला हुआ था, खुला करके वो फटा हुआ जंक वाले कारण खुला हुआ था, और उसी के अंदर एक ड्रेस कपड़ा था उसका फटा हुआ ना, उसी को सामने रख करके वो हाथ जोड़कर बैठा रहता था, वही देखे बोले ये है क्या, उसके अंदर जाकर ढूंढना था, कुछ भी नहीं था, केवल एक जोड़ी कपड़ा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आधा घंटा सरजमीनी तदंत करने के बाद हाँ सिर्फ देखे वो ना मालिक को समझ में ना आ रहा है ना हमको बाकी को समझ, अरे वो क्या कर रहा था, किसी भी सो तो नहीं रहा था, नहा तो नहीं रहा था, बाथरूम में नहीं गया था, यहीं बैठा था, ये बक्सा खोल करके फटा पुराना बक्सा पुराना निकल, तो उनको पूछा मालिक, अब कुछ नहीं मिला, थोड़ा टोन डाउन हो गया सबका, वॉल्यूम डाउन करके पूछे उनका नाम लेकर, भाई तो कर क्या रहा था, प्रतिदिन कर रहा है ऐसा कर, ना साहब क्या बताऊं, मेरे छोटी मुँह ये बात में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप आ गए सारे मेरे सब वरिष्ठ कर्मचारी भी साथ में लेकर आए, आप जानना चाहते हैं, बहुत छोटी बात मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं नहीं बताना पड़ेगा, बताओ क्या है बताओ, बात देखे ठीक है साहब, आप मेरे मालिक है, आप मानते हैं, आपके शरण से मैं अभी इतने तक आया हूँ, तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ प्रतिदिन, मैं क्या ना प्रतिदिन आपकी कृपा से तो मैं इतने अभी आया हूँ, प्रतिदिन मैं जिस दिन आया था ना पहले बार गांव से जो आया था, भटकते 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 कई दिन के बाद आपके कोठी में पहुंचा था और मुझे वहां काम मिला, तो उसी समय में इसी पैंट शर्ट को पहना था, 7 जगह में फटा रफू किया गया है, एक पुराना शादी के दिन मिला था, और 6 साल के बाद वो भी पहनते पहनते धोते धोते हुए फट फट पुराना ऐसे रफू करके रखा था, वही मेरे जोड़ी जिसको पहनते हुए 2 दिन तक भूख पेट में उपास रह करके ढूंढते ढूंढते कोई दूर दूर कर रहे थे, कोई पूछ नहीं रहे थे, इस दयनीय असहाय अवस्था में आपके यहाँ सिक्योरिटी के काम मिला था मुझे, वो उससे फिर उसी को पहन करके सिक्योरिटी काम किया था, रात दिन रात को धोकर सुखाता था, सुबह पहनता था, और कुछ भी नहीं, दूसरा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, उसको करते करते जब प्रमोशन होने लगा, जब मेरा पास समर्थ हुआ कि दूसरे एक जोड़ी में कपड़ा बना पाऊं, तब फिर इस कपड़ा को निकाल करके धो करके सुखा कर इस ट्रंक में रखा, मेरा यही संपत्ति है, बाकी जो मिलता है तो घर भेज देता हूं, इसको क्या करना, उसको खोल करके आधा घंटे में प्रणाम प्रार्थना करता हूं ड्रेस को, क्यों प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको देखने से मेरा स्थिति मुझे याद आता है, मैं आधा घंटा बैठ कर अपना औकात को सोचता हूँ कि अरे मूर्ख तू आज ही मुनीब बन गया मैनेजर बन गया, लेकिन तू इसी के लायक था, यही तेरा पोशाक है, सोचो तू क्या है, आपने मन में सोचो मत कि अरे मैनेजर, नो रिजेक्टेड सिक्योरिटी नाइट ड्यूटी, यही ड्रेस को देखो याद आता है, اس ڈریس کو دیکھ کر کے میں سوچ جب کرتا ہوں میرا وہی اوقات یاد آتا ہے کہ میں کیا ہوں. آج آپ لوگ کے کرپا سہاتس میں آ گیا لیکن اس سچائی تو وہی ہے, اسی کو پہن کر گھوم رہا تھا. میرے اصلیت کو میں آدھا گھنٹہ میرے اپنے اصلیت کو میں دھیان کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ میں کس کے لائق ہوں, لائقات میرا دھیان کرتا. اس بات کو جب سنا مینیجر نے اور جتنے سارے سنے سب کا نینم گلدسر دھاریا بدنم گد گد ردھیا گرا, ہوگا نہیں, آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگا, کچھ بولنا چاہ رہے تھے بولی نہ نکلا, گد گد ہو گئے. آہا سچ میں تو کمال کرتے, اتنا ہم ویوہار تو اتنا اچھا تھا لیکن یہ اس کا. تو کچھ سمجھ میں آیا صحیح نیچتا کیسے بننا چاہیے. لیکن ہم لوگ جب جوائن کر لیتے ہیں ابھی ڈیوشنل لائف میں آئے اس کن سوسائٹی میں, جب ہم کبھی جوائن کرتے ہیں آپ سبھی نے تو سبھی کا جیون میں ایسا ایک دن آیا ہوگا جو دن آپ کا فاسٹ ڈے آف یور لائف ان دی ٹیمپل آف اسکن, فاسٹ ڈے دی فاسٹ ڈے. آپ تھوڑا سوچئے جس روپ میں جس پرکار سے آپ آئے تھے, جائننگ کا پرتھم دن پرتھم اوسر میں آئے تھے, کس پرکار کس کو ملے اور آپ کا کیا موڈ تھا, کیا بھاو تھا, کس کو یاد ہے؟ بھول گئے. چھ مہینہ سال بھر دو سال تین سال ہو گیا, ہم تو اب اسی نہیں ہے. اتنے اکٹھا کر لیے پاپ, اتنے پاپ اکٹھا کر لیے کہ کیا بولتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو, سینئر. تو جونیئر ہے, ہم سینئر. یہ پدوی سے گھوشت کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اصلیت کو بھول جاتے ہیں. لیکن اسی استھتی میں آ کر بھی جب ہم پرتی دن ایک آدھ آدھا گھنٹہ بھی اسی استھتی کو منن کرے, سوچیں کہ جس دن دی فرسٹ ڈے آف مائی ٹیمپل جس دن آیا تھا میرا کیا منوبھاو تھا, اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ کے لگا پرتی دن سوچے تو ہم واستوک نیچتا کو انوبھو کر سکتے ہیں. واستوک نیچتا مطلب الویز مینٹین یور جونیئرٹی, سب سے جونیئر بن کے رہو, کبھی سینئر بنو ہی مت, ہمیشہ جونیئر. آپ یاد رکھیے, یاد سوچئے کہ سچائی تو ہم سبھی کا لائف میں ہوا ہے. پہلے دن جب آئے تھے تو ہمارے ایک گھنٹہ پہلے ہی آیا تھا, میں 2 بجے پہنچا تھا, وہ 12 بجے آ چکا تھا. اب 12 بجے آیا تھا, میرے اوپر حاکم کرتا ہے, یہاں بیٹھو, اب مجھے ماننا پڑتا ہے, ہاں بھائی جاتا, ایک گھنٹہ پہلے ہی آیا تھا لیکن میرے اوپر سینئرٹی دکھا گیا کہ میں تیرے سے زیادہ جان کر, اب ماننا پڑتا ہے, ہاں اٹھ کر جاتا, ایسے نہیں ایسے کرو, کہتے ہیں نا ایک گھنٹہ پہلے بھی جو آئے وہ بھی ہم کو کسی روک دکھاتا ہے لیکن ماننا پڑتا ہے. تو اسی پرکار جو بھاونا جو تبھی تھا اسی کو اگر ابھی بھی ہم برقرار رکھ سکیں, یہی ہے واستوک نیچتا. اب باقی کے گن تو ابھی سمے نہیں بولنے کے لیے, سہشنتا دوسرا گن ہے, تیسرا گن ہے امانتا اور چوتھا گن ہے ماندتا. یہ 4 گن ہونے کے بعد سہج میں ہری نام ہو سکتا ہے. ہرے کرشن. آج سمے ہو چکا ہے, سب ٹوٹ کر جانا چاہتے ہیں تو پھر کبھی آلوچنا کریں. ہرے کرشن. کس کا کوئی پرشن ہے؟ یس. کیا ہاں کیسے آپ تو بولا ہی تو ہے, بھلے ان کے سامنے نہیں بولا دوسرے کو تو بولا نا, ریئیکشن تو ہوا, تو پھر سہنشیلتا کیسے ہوا؟ نو ریئیکشن ہونا چاہیے, کچھ نہ بولے, میں سہن کر لیا پھر بولا نہیں. اب جو بولتے ہیں چاہے ان کو بولو گھر میں بولو اور کسی کو بولو, بولا تو صحیح, تو ہی سہنشیلتا بندھن ہے نا. Anything else? سیل پربھو پاد کی ایکادشی ورت کی گور ہری.